नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने लागत में कटौती और मुनाफा हासिल करने के लिए 251 कर्मचारियों की छट्टी की है। मीशो के संस्थापक और सीईओ विदित आत्रे ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस अवधि के साथ ही एक महीने का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इसके अलावा उन्हें ई शॉप्स का लाभ भी मिलेगा। ई शॉप्स के तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को कुछ शेयर देती है। आत्रे ने एक आंतरिक ईमेल में कहा, हम मीशो के कर्मचारियों की संख्या में 15% की कमी कर रहे हैं, जिससे 251 कर्मचारी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने 2020 से 2022 तक 10 गुना वृद्धि की। हालांकि बीते दिनों चुनौतियां तेजी से बढ़ी हैं। कंपनी लागत को काबू में रखने पर खास तौर से जोर दे रही है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार है और कंपनी इस पर खास ध्यान दे रही है। आईफोन बनाने वाली कंपनी के मुखिया ने यह भी बताया कि भारत में उसके कारोबार ने एक नया तिमाही रिकॉर्ड बनाया है और सालाना आधार पर बेहद मजबूत 2 अंकों की वृद्धि हुई है। एप्पल ने पिछले महीने भारत में एक महत्वाकांक्षी खुदरा विस्तार योजना शुरू की और कुक ने दिल्ली और मुंबई में कंपनी के खुदरा स्टोर का उद्घाटन किया। कुक ने तिमाही परिणामों की घोषणा के दौरान कहा, दोनों स्टोर एक शानदार शुरुआत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, भारत में कारोबार को देखते हुए हमने एक तिमाही रिकॉर्ड बनाया और 2 अंकों की बेहद मजबूत सालाना वृद्धि दर्ज की। ये हमारे लिए काफी अच्छी तिमाही थी और भारत आश्चर्यजनक रूप से रोमांचक बाजार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही के दौरान भारत की सोने की मांग 17% घटकर 112.5 टन रह गई। ये गिरावट सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर चढ़ जाने और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण हुई। WGC के स्वर्ण मांग रुझान के मुताबिक सोने की कुल मांग 2022 में इसी तिमाही के दौरान 135.5 टन थी। WGC के क्षेत्रीय CEO सोम सुंदरम PR ने PTI भाषा से कहा, वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत की सोने की मांग सालाना आधार पर 17% गिरकर 112.5 टन हो गई। ऐसा कीमतों के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ जाने और उतार चढ़ाव के चलते हुआ। इससे बाजार की धारणा प्रभावित हुई और सोने के आभूषणों की मांग 2022 की पहली तिमाही में 94.2 टन से घटकर जनवरी मार्च 2023 में 78 टन रह गई। समीक्षाधीन तिमाही में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग सालाना आधार पर 13% घटकर 1080.8 टन रह गई। इसे एक साल पहले इसी तिमाही में ये मांग 1238.5 टन थी। उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व CMD अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वह किसी सहानुभूति के पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। वह इस मामले में 4 साल से अधिक समय से जेल में है। पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा, आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है, आपने उनकी मेहनत की कमाई को चुरा लिया, आप किसी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। रियल एस्टेट समूह के पूर्व CMD और फर्म के अन्य निदेशकों को शीर्ष अदालत के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रबंधन ने बड़े स्तर पर घर खरीदारों के धन की हेराफेरी की है। इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की भारत यात्रा के दौरान कृषि, तकनीक, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान देने के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसराइल के एक शीर्ष उद्योग निकाय ने ये जानकारी दी। कोहेन अगले सप्ताह 9 से 11 मई के बीच 3 दिन के लिए भारत आएंगे। इस दौरान वह मुंबई में यहूदी ट्रेल का उद्घाटन भी करेंगे। इसराइल एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने PTI भाषा को बताया कि विदेश मंत्री के साथ विविध क्षेत्रों की 25 कंपनियों का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है। इस दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ इसराइल एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसराइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इसराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट MOU पर हस्ताक्षर भी करेंगे। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पेटन ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि वह तेल उत्खनन के लिए असम के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले हितधारकों और जनजातीय निकायों के साथ परामर्श करेगी। पेटन ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। इससे पहले प्रस्तावित MOU पर विभिन्न जनजातीय संगठनों और नगा भूमिगत समूहों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, असम सरकार के साथ MOU करने से पहले सरकार सभी हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल किसी विशेष जनजाति बल्कि तेल क्षेत्र के मौन, लोंगलेंग, मोको कचुंग, वोखा, न्यूलैंड, दीमापुर और पेरिन सहित सभी आदिवासी निकायों और हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,197 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया। बैंक ने बताया कि उसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.39% है, जो एक दशक में सबसे अधिक है। इसके साथ ही एनपीए 8 साल के निचले स्तर 6.04% पर है। बैंक ने मार्च 2023 तिमाही में 476 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो अब तक किसी भी तिमाही के मुकाबले सबसे अधिक है। बैंक के प्रवक्ता ने कहा, जम्मू एवं कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,197 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो अब तक का सर्वाधिक है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।